તારીખ 18/9/1983 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 609 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 10.
અનુકૂળતા મેં હોતા હૈકૂળતા મેં ગમન કિયા હોતા હૈ જીવ દરકાર હૈ શારીરિક અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતા કી જીતની દરકાર હૈ દરકાર આત્મા બાહ્ય લાભ નુકસાન કો સમજા હૈ લેકિન આત્મા અશાંતિ કા નુકસાન ઓર શાંતિ કા લાભ કૈસે હોતા હૈ બિલકુલ અભ્યાસ હૈ મૂંડ કહેતે નુકસાન પ્રવૃત્તિ સાવધાન રહેતા હૈ આત્મા કે નુકસાન ઓર આત્મા કે લાભ કહેતા આપણી શાંતિ ઓર આપણી અશાંતિ
જરૂરી મળતા હૈ ખાને પીને જ્યાદા
आध्यात्मिक वृत्ति रहती है तो शरीर को शरीर के विज्ञान के अनुसार चलेगा, खाने पीने की रुचि के अनुसार नहीं चलेगा। इसमें नियमन मेरा और रस बढ़ गया जरूरी गड़बड़ी हो जाएगी, प्रमाद भी बढ़ेगा। क्या करें, भीड़ ज्यादा आती है तो फिर वो क्या करे कि इतना आराम लेना ही पड़ता है, वरना हमारा शरीर काम नहीं करता। अनेक प्रकार से सत्संग के गौ होने का जो प्रकार बनता है उसमें ये अनुकूल नहीं पड़ता है, प्रतिकूल पड़ता है। ऐसा थोड़ा बहुत छोटा मोटा कारण पाकर के भी समागम को गौण किया जाता है, तब उसका प्रसार मंद रहता है। इस संक्रमण को जो प्रयत्न करना चाहिए, जो इनिशिएटिव लेना चाहिए वो नहीं लेता, ठीक है गौण करके छोड़ देता है। और ऐसे ऐसे कारणों से सत्संग फलवान नहीं होता, मतलब थोड़ा बहुत सत समागम रहता है। इनको ये शिक्षा दी जाती है कि इस प्रकार के प्रमाद के कारण जो भी तुमने थोड़ा बहुत सत समागम किया वो भी फलवान होगा नहीं। फलवान को सत्संग तब होता है, इस कार्य में भी अपने हिस्से के कार्य में भी लगन से काम हो। तब जो काम लगन में नहीं होता है तो ये सत्संग आदि का जो फल आना चाहिए वो नहीं आता। आगे कहते हैं कि सत्संग की अर्थात सत्पुरु की पहचान होने पर दोनों संप्रदायों का यही कारण है कि अपने अपने संप्रदाय में जो भी धार्मिक वार्तालाप, धार्मिक शास्त्रों का श्रवण कथन जो भी प्रकार होता है उसको सत्संग कहने में आता है। स्वामीनारायण संप्रदाय में तो बहुत प्रचलित मुड़ी का शब्द है, अपने जैसे ऐसे कहते हैं तो अपने मुमुख को मिले, हमारे मुमुख के वहां गए थे वो कहेंगे हमारे सत्संगी मिले, हमारे सत्संगी के वहां गए थे। मैंने ये शब्द जो प्रचलित हो गया है लेकिन सत्संग की पहचान होनी चाहिए ऐसा कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि सत्पुरुष जो आत्मा है, विकार सत्पुरुष जो आत्मा है उसके विषय में इसका परिज्ञान और उसके पाने की विधि ऐसा विषय जहाँ चलता हो जिसके संग में उसको सत्संग कहते हैं। यानी अपना सत्स्वरूप प्राप्त होने का रास्ता मिले, इसका उपाय मिले, आत्मज्ञान होने का उपाय मिले। जो आत्मज्ञान परिभ्रमण का नाशक है, खेलने वाला है और सर्व दुख का नाश करने वाला है, सर्व प्रकार के दुख का नाश करने वाला है, ऐसा आत्मज्ञान जहाँ संभवी हो इसकी जहाँ चर्चा हो, इस विषय की गहराई में जाने का जहाँ अवकाश हो, ऐसे व्यक्तियों का समागम को सत्संग कहने में आया है। और ऐसा आत्मज्ञान जिसको प्राप्त हो वो तो मूर्तिमंत आत्मज्ञान स्वरूप है, इसलिए इसका समागम को तो सत समागम कहने में आता ही है। दोनों बात किया है, सत्संग की पहचान होने पर उसका मतलब ये हुआ कि अपना जो सत स्वरूप है उसका पहचान का वहाँ निमित्त बने उसको बार में सत्संग कहने में आता है। परमात्म सत्संग को अपनी आत्मा का संग में अनुभव होना यही सत्संग है। और इसके लिए निमित्त जो है उसको माइंड में सत्संग का आरोप देने में आता है। शैतान होने पर भी यदि वह योग निरंतर न रहता हो, ऐसी उदय की स्थिति हो कि जिसलिए निरंतर सत्संग में हर हमेशा ऐसा योग बने ऐसा नहीं बनता हो, तो सत्संग से प्राप्त हुए उपदेश का ही प्रत्यक्ष सत्पुरुष के तुल्य समझकर विचार करना तथा आराधन करना, कि जिस आराधन से जीव को अपूर्व सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। मालूम किसे है यहाँ कि यदि ऐसा हो कि सत्पुरुष जो है अपने गांव में अपने शहर में उनका निवास स्थान न हो, दूसरे गांव में जहाँ दूरी हो वहाँ वो विराजमान रहते हो, और उदयवश अपना रहना अपना निवास साथ में न हो, जमीन जमीन समय का अवकाश मिले या समय को निकाल करके सब समागम करते हैं, फिर भी ये बीच में एक साथ सत्समागम का लगातार अवसर नहीं मिलता है, उसे क्या करना चाहिए, यह एक शिक्षा है कि अगर निरंतर ऐसा सत्संग की प्राप्ति न हो तो जब प्रत्यक्ष समागम हुआ हो सत्संग का और इसका उपदेश ना हो, और इसका उपदेश ना हो इसका मतलब क्या है कि अपनी अशुद्धि दूर करने के लिए अपने प्रयोजनभूत विषय बातों का उसने ध्यान दिया हो, लक्ष्य दिया हो कि मेरे काम की चीज ज्ञानी महात्मा ने कही थी, प्रत्यक्ष योग में ये बात चली थी और ये हमारे काम की बात है, हमें यहाँ से आगे बढ़ना है, इस प्रकार के दोस्त को हमें छोड़ना है और इस प्रकार हमको अपने परिणाम में विकास करके आगे बढ़कर धर्म की प्राप्ति करनी है, ऐसा जो प्रयोजनभूत विषय प्रत्यक्ष में सुना हो तो परोक्ष में इस उपदेश को प्रत्यक्ष सत्पुरुष के तुल्य समझकर मैंने दूसरी दूसरी बातों में नहीं उलझ के अपने हित के विषय में विचार करना, एक पर हो इसके विषय में जितना हो सके उतना गंभीर और गहरा विचार करना, सिर्फ विचार ही करते रहना इतना नहीं, देखो दो बात किया है, विचार करना तथा आराधन करना क्या है, आराधन करना क्या चीज, विचार तो हम कर सकते हैं लेकिन आराधन करना मतलब क्या, कि उसको आचरण में लाने का प्रयास करना उसको आराधन करने में आता है। वैसे तत्वज्ञान के विषय में शास्त्राभ्यास बहुत करते हैं, खास करके अपने मुक्त समाज में स्वामी जी के जो अनुयायी होंगे वहाँ शास्त्र स्वाध्याय तो बहुत चलता है, लेकिन शास्त्र स्वाध्याय का आचरण जो है उसमें कमी दिखती है प्राय, तो दूसरे लोग भी इसकी कमी हमारी करते हैं, ये बातें करने से काम हो जाएगा क्या, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, मतलब भले ही ये लोग इस विषय में ज्यादा उंधे उतरे न हो समझे न हो, लेकिन इतना तो कॉमन सेंस से भी समझते हैं कि फिर बात भी करेंगे और इसका आचरण नहीं करेंगे तो समझ नहीं करेंगे अपने को, अपन सही है, कॉमन सेंस से भी वो समझ नहीं होता दूसरे को, तो फिर वो किसी ने टिप्पणी करेंगे कि बात है सुनने से कुछ काम होने वाले। इसका आचरण चाहिए, इसका आराधन चाहिए, ये बात सत्पुरुषों ने कही है, लेकिन इस विषय को सिर्फ विचार तक सीमित रखते हैं और आचरण का बोध है उसको अंगीकार नहीं करे, तो हमें सत्पुरुष की आज्ञा मानी है, इनका बोध को हम स्वीकारते हैं, मानते हैं, ये बात नहीं रहती। यहाँ मानी बात है, कितनी विषय में समझदारी हो, बुद्धि से कितनी भी पहुंच हो, लेकिन ये बुद्धि पर काम की है, जब इस बुद्धि में समझ में आई हुई चीज का आराधन हो यानी आचरण हो, और ये प्रयास मनुष्य को अवश्य अवश्य करना चाहिए, तभी इस लाइन में इनका प्रवेश होगा। इसके पहले भले ही कहलाने वाले मनुष्य हो, लेकिन ये सच्चा नहीं, ऐसी बात जरूर है, ऐसी बात है। कहते हैं कि विचार करना तथा आराधन करना, उपदेश को विचार से आगे जाकर, विचार तो आएगा ही आएगा, बिना विचार को आचरण करना संभवित है ही नहीं, लेकिन विचार तक ही रुक जाना ये भी इस किस्म की पर्याप्त स्थिति नहीं है। तो विचार से आगे जाकर इस बोध को, उपदेश को अंतर में उतारना, अंदर में उतारना, ये भी इसका आराधन है। ऐसा आराधन करना कि जिस आराधन से जीव को अपूर्व सम्यक को उत्पन्न होता है, ये हम क्या कहते हैं, ये मुमुक्षुता से सम्यक दर्शन पर्यंत की एक पंक्ति में बात कर दी। जो मुमुक्षु होता है वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, मैंने मोक्षार्थी को ही मोक्ष मार्ग मिलता है और इसका ही मोक्ष होता है, लेकिन मुमुक्षुता की भूमिका से आगे बढ़कर सम्यक दर्शन पर्यंत जिसको पहुंचना हो, अर्थात मोक्ष मार्ग में जिसको प्रवेश करना हो और जन्म मरण का अंत लाना हो, तो उसे इस विषय का तत्व का मात्र विचार ही नहीं करना है, इसके आगे उनका आराधन भी करना है। तो जो बात समझ में आई वो तो थ्योरी है, थ्योरी को प्रैक्टिस में नहीं रखेंगे तो थ्योरी जो समझे वो बेकार जाएगी। ये जो नक्शा बनाता है मकान का, तो ये पेपर पे उसका ब्लू प्रिंट निकालता है ना, क्योंकि ये हमारा किचन है, क्या ये पेपर पे रसोई होगी क्या, ये हमारा बेडरूम है, क्या यहाँ देखना होता है पेपर में, कागज में कुछ काम नहीं होता। ये तो एक प्लान है कि जिस पर उस प्लान को बराबर एग्जीक्यूट किया जाता है, वैसे ही ये जो समझदारी की चीज है, इनको अगर जीवन से या परिणमन से, जीवन को या परिणमन को, एक ही बात है, परिणमन है वही जीवन है, जीवन है ये परिणमन है, अगर ये जीवन में या परिणमन में नहीं आई समझ, यानी उसकी समझ के अनुसार परिणमन नहीं हुआ, जीवन नहीं बदला, ये समझ है, ये वास्तव में समझ नहीं है, ये असमझ ही रही है। क्योंकि समझ में ये बात शामिल है कि इसको समझ तक नहीं रखना है, समझ की सीमा में नहीं बांटना है, उसको आचरण में और आराधन में हमें लाना है। ये बात भी समझ में है, ये बात समझ में नहीं है ऐसा नहीं है। तो ये बात जो नहीं आई तो समझ भी नहीं आई, ऐसा कहने में कोई अवास्तविकता नहीं है। इससे ये स्पष्ट हुआ कि यह जो मार्ग है वो परिणमन सारा के सारा परिणमन बदलने का मार्ग है, वो सांसारिक भावों रूप परिणमन है, और जिसके फल में जन्म मरण का परिभ्रमण का चक्कर है उसके बिल्कुल विरुद्ध ऐसा जो मोक्ष मार्ग का परिणमन है, तो दूसरी क्वालिटी का बिल्कुल जुदी जाति का भिन्न जाति का ये परिणमन है और जीवन है। और जीवन है ये तो हमेश की चीज हो गई थी, ये कोई घंटे दो घंटे की चीज नहीं है। तो हमने घंटा भर शास्त्र स्वाध्याय कर लिया, इतना इसलिए हमने कर्म कर दिया, हमने पूजा कर ली इसलिए हमने कर्म कर दिया, हमने कुछ समय तक कुछ वस्तु के ग्राम त्याग के विषय में फेरफार कर दिया इसलिए कर्म कर दिया, ऐसी चीज नहीं है। ये तो एक सतत जीवन की परिणमन की निरंतर की चीज होती है। इसलिए ज्ञानी को अंतर परिणमन में भेद ज्ञान सदा ही चलता है, ये कोई घंटे दो घंटे चार घंटे की चीज नहीं है कि ध्यान कर लिया दो घंटा भर तो चलो गर्म हो गया, ऐसा कभी बनता नहीं। ठीक है, हमारी भाई साहब ध्यान करते थे, ध्यान तो एकाग्रता का चीज है, और स्वरूप को पहचाने बिना और स्वरूप में शून्य है ऐसी प्रकृति आए बिना क्या इसमें एकाग्रता होगी? नहीं, तो ही नहीं सकती। एकाग्रता तो एक आकर्षण का कार्य है, आकर्षण का फल है, और आकर्षण जीव को वहां होता है जहां इनका सुख होता है। सुख नहीं हो गए और आकर्षण हो गए कभी बनेगा नहीं, भले ही सुख न हो लेकिन गलत प्रकार से किसकी कल्पना हो गई हो तो भी आकर्षण होगा। तो सच्चा सुख जहाँ हो ऐसे अपने आत्मा में सुख का अस्तित्व, सुख की मौजूदगी नजर आए और आकर्षण और एकाग्रता न हो ऐसा कभी बनता है। ऐसे ये जो विषय है वो कोई पीरियोडिकल बात नहीं है कि कितना पीरियड में ये काम कर लिया है इसने, चलो अपना इसकी बात पूरी हो गई, अब तो ध्यान उलझना हो मालूम है, ऐसी बात नहीं है। ये तो सारा परिणाम बदलना है और सारा जीवन बदलना है, ऐसा बदलने की जिसकी तैयारी हो, जिसका कृत निश्चय हो इस विषय में, वही जीव इस विषय में अंदर में इस आराधन को बराबर प्राप्त करेगा, वरना वो विचार में ये बात सीमित रह जाएगी, आराधन उसका होगा नहीं। और ऐसी विचारधारा को यहाँ सही विचारधारा यथार्थ विचार की स्थिति भी समझी नहीं जाती, वो अयथार्थ विचार की प्रकृति है। ज्ञान सिद्धांत विचार करना तथा आराधन करना, तो जिस आराधन से जिस विचार से नहीं, विचार का जो शेष था उसको छोड़ के आगे बढ़े, पीढ़ी करते हैं तो पीढ़ी के और जो पैर रखा है वासुकी छोड़ के ऊपर जाते हैं। जैसे आराधन करना वो विचार की सीढ़ी को छोड़ के ऊपर जाने की बात है, कि जिससे जीव को अपूर्व मैंने अनंत काल भूत काल में पूर्व में कभी नहीं उत्पन्न हुआ हो ऐसा सम्यत्व उत्पन्न होता है, ऐसा ज्ञान है। फिर सारे विश्व में जैन दर्शन में ही ये सम्यक्त का अधिकार है। ऐसे यम नियम संयम तप त्याग ज्ञान आदि की सब प्रकार के अपनी अपनी प्रवृत्ति सब संप्रदाय में चलती ही है। संप्रदाय धार्मिक संप्रदाय में कोई पाप की प्रवृत्ति करते हो ऐसा तो कड़ी कड़ी नजर नहीं आता है। तो फिर जैन धर्म की विशिष्टता क्या है, ये बात हुई। सर्वसाधारण जो बना भी है उन्होंने तो जैन धर्म को जाना ही है। जैसे प्राय संयोग में सुख है, अनुकूलता आदि में सुख है, ऐसा सारे मनुष्य प्राणी में यही प्रचलित अभिप्राय है, यही निश्चय रहता है। तो लोग अपने माने हुए देव गुरु शास्त्र के पास भी किसी की ही जीत मानता है, क्या है उनको ये ऐसा लगता है कि हम हमारे देव गुरु शास्त्र के पूजा भक्ति आदि जो कुछ भी हमारी समर्पणता करेंगे हमें इसका लाभ मिलेगा और इस लाभ में हमको सभी प्रकार की अनुकूलता बनी रहेगी और कोई भी जो भी प्रतिकूलताएं हैं अड़चने हैं वो हमारे निकल जाएगी। बस वहां भी जैसे दुकान पे जाके धंधा करता है वही धंधा हो गया दुकानदारी हो गई, इसमें बंधमोक्ष का विचार कहाँ रहा, तो बंधमोक्ष का तो वहां विचार नहीं। मेरे को परिभ्रमण छूटना और जन्म मरण से छूटना और मोक्ष दशा निराकुल परमात्म दशा में रहना सारी अनंत काल तक, ये बात तो इसमें आती नहीं है। पर यह बात आती नहीं है तो इसका मूल जो सम्यक दर्शन है वो बात भी कही गई है। जैन दर्शन का साहित्य देखने पर ये चैलेंज कर सकते हैं सारी दुनिया को कि बताओ मोक्ष का मूल ऐसा सम्यक दर्शन की बात कहाँ है। हमने तो जो कुछ थोड़ा बहुत देखा है इन दर्शनों का शास्त्र, उन सभी शास्त्रों में जितनी भी फिलोसॉफी है तत्वज्ञान है वहाँ कहीं भी सम्यक दर्शन का विषय नहीं चला है। वैसे तो सबसे ज्यादा तत्वज्ञान का विषय विस्तार को प्राप्त हुआ है ये एक वैदिक दर्शन है, हिंदू में जो वेद पे चार वेद है उसमें भी इसके अंत का जो भाग है उसको वेदांत कहते हैं, उसकी सारा उसकी शक्तिमान रचना है, वो सारा आत्मा और परमात्मा का विषय का तत्वज्ञान उन्होंने उसी जगह पर रखा है। और जितने भी दर्शन है जैन दर्शन को छोड़ करके तो सभी दुनिया के संप्रदाय में तत्वज्ञान का विषय इतना नहीं है जितना वेदांत है। बाहर के जो लोग हैं पश्चिम के देश वाले यूरोपियन कंट्री है अमेरिका वाले पूर्व में हिंदुस्तान को छोड़ के भारत को छोड़ के ये तो तत्वज्ञान के विषय में सब बालक जैसे समझो। यहाँ अपने लोग जाते हैं तो बहुत आदर करते हैं इस विषय में, तो जो ये जानते हैं कि ये अध्यात्म विद्या है वो भारत में चली चली है। और इसमें भी जैन दर्शन का जो विषय है इनकी जो विशालता है, इनकी जो गहराई है, इनकी जो सूक्ष्मता है, ये तो कहीं भी पाई नहीं जाती। इन सभी बातों में सम्यक दर्शन का जो विषय है कि जहां से दिशा बदलती है परिणमन की, जो परिणमन की दिशा बहिर्मुख अनादि से है और जिसके कारण से जन्म मरण होते ही रहते हैं, मिलते नहीं है, इस सारी दिशा को बिल्कुल उल्टा अबाउट कर, उल्टा पलटा मार के इससे रिमूव होके अंतर्मुख होने को, अंतर्मुख कराने वाला परिणमन को, अनंत गुण के परिणमन को अंतर्मुख कराने वाला जो कोई है, और हमारे गुरुदेव ने 45 साल तक इसी एक विषय पर प्रवचन दिए। एक जबरदस्त घटना घटी है इस साल में कि न्यायिंग के अभी 3 संप्रदाय है, दिगंबर, श्वेतांबर और पीतांबर का पीठा वैष्णव हुआ ऐसा स्थान पर अब तक 13 हो गए हैं प्रमाण में। सभी संप्रदाय सम्यक दर्शन का जो अधिकार है और इस अधिकार पर जो प्रकाश डाला है, एनलाइट किया है इस विषय को, जो किया है जबरदस्त काम किया। आज विद्वान साहित्य को भी देखो तो इतनी ध्यान दिन तक एक एक बात को इतनी संखेड़ी है और इतने योग्यता के अनुसार अनुसरण करने के लिए अभिलाषी हुए हैं। भले ही काम अपनी शक्ति के अनुसार हो, योग्यता के अनुसार हो, लेकिन जिसकी इस विषय में कामना है, वैसे समस्या तो इतनी आसान नहीं है कि सारे संसार को स्वाहा करना, करते हैं पूजा में स्वाहा, सुधारो विनाशनाय कामवान विध्वंसनाय, वैसे सारे संसार की स्वाहा करना, समस्या तो अवश्य बड़ी है ही, लेकिन एक सम्यक दर्शन ऐसी चीज है। उन्होंने चौंट मारे ऐसी जवान में, ऐसी वाणी में ये विषय को इतना प्रस्तुत किया है कि सम्यक दर्शन की कामना, सम्यक दर्शन की अभिलाषा, इसका प्रयत्न करने की भावना बहुत से लोगों में पैदा हुई। ये अपूर्व सम्यक उत्पन्न होता है और जीव को मुख्य से मुख्य और आवश्यक से आवश्यक यह निश्चय रखना चाहिए कि मुझे जो कुछ करना है वह आत्मा के लिए कल्याण रूप हो, उसे ही करना है। भले ही कल्याण का मार्ग उसने देखा न हो, जाना न हो, प्राप्त किया न हो, फिर भी अगर इनका निश्चय ऐसा हो और इसकी मुख्यता हो, इसकी आवश्यकता हो, तो उसका एक जो सामान्य सिद्धांत है, कार्य करने का एक सामान्य सिद्धांत है, किसी भी भूमिका में हो, यह जीव किसी भी भूमिका में हो, भले ही भूतकाल में बहुत से पाप कार्य इनसे हुए हो, मैंने पाप रस में उसका पूर्व का जीवन प्रसार हुआ हो, या इसके बहुत से प्रकार के पुण्य के कार्यों में इसका जीवन प्रसार हुआ हो, किसी भी भूतकाल वाले हो, लेकिन अगर इसका यही निश्चय हुआ कि मुझे जो कुछ अब करना है, अब से जो कुछ करना है वह आत्मा के लिए कल्याण रूप हो, उसे ही करना है,
एक आत्मार्थ का प्रयोजन भूत दृढ़ संकल्प है कि मुझे जो भी करना है वो आत्मा के लिए करना है। दुकान पे जाके धंधा करना है, पैसा कमाना है, देह के लिए नहीं, निवृत्ति के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, कि कब मैं यहाँ से निवृत्त हो पाऊँ, ये बात है। परिस्थिति बस करना नहीं है, करना पड़ रहा है, ये बात है। करना तो नहीं है, जो भी आत्मा के कल्याण की प्रवृत्ति है वही करनी है, और जो आत्मा के कल्याण की प्रवृत्ति है वो नहीं करनी है, फिर भी की जाती है तो कैसे, कि करनी पड़ती है ऐसी परिस्थिति में अगर जो की जाती है तो उसमें छूटने का भाव जो है वो मुख्य रहेगा, उलझने का भाव मुख्य नहीं रहेगा, छूटने का भाव मुख्य रहेगा। मैंने सभी कार्य में जो कल्याण हो उसी ही करना है, और उसी के लिए, कल्याण के लिए इन तीनों योगों की मैंने मन वचन काया तीन योग है, मन की प्रवृत्ति, तन की प्रवृत्ति और वाणी की प्रवृत्ति, पूरे बल से प्रवृत्ति होती हो तो होने देना, उदय का पूर्व कर्म के उदय का बल हो तो भले ही कुछ प्रवृत्ति हो जाए, लेकिन हमें तो इनसे निवृत्त होना है, ऐसा बात है। परंतु अंत में उस प्रयोग से रहित स्थिति करने के लिए ये इसमें आशय है। देखो इसमें अच्छा दृष्टांत है कि दुश्मन के दल में कोई जासूस जाता है, इसके लश्कर में शामिल हो गया, क्या वो करता है कि जो ड्रेस है वो पहले से उन्होंने ऐसा बनवा कर पहन लिया है, तो ड्रेस से तो भिन्न नहीं पड़ता, और फिर भी जो इसके लश्कर में जो नीति नियम और जो भी इनके दैनिक कार्यक्रम है वो बिल्कुल सावधानी से उसमें वो करता है। क्यों सावधानी रखता है, इसके दरवाजा कभी भूल करेगा तो उसको शिक्षा मिलेगी, वो सब चलेगी, लेकिन वो तो भूल नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने भूल की तो वो पहचाना जाएगा कि ये हमारे दल का आदमी नहीं है, अपने दुश्मन के दल का यहाँ आ गया है छुपा हुआ, मार डालो, तो वो तो उसकी मौत नहीं हो, और वो भी उनको जासूसी करनी है, वो पूरी प्रवृत्ति भीतर अंतर में छिपे छिपे करता रहेगा, और बराबर जो है अपना दिखाव जो है वो बराबर बताते रहेगा, क्या बात है असल में, क्या उसका वो नीति नियम का पूरा पालन करता है, इसलिए क्या उसमें बल गया है, तो शामिल नहीं हुआ है, वो इतना शामिल होने के बाद बिल्कुल विरुद्ध है, बस ऐसे संसार की प्रयोग की जो प्रवृत्ति है मन वचन काया की, भले ही दूसरे संसार की तरह करना पड़े, करना नहीं है, लेकिन अब तो जासूसी हो गई, आत्मा में आना है और संसार के दल में है तो भले ही संसार की प्रवृत्ति करनी पड़े, लेकिन कैसे उनको तोड़े, क्या जासूस क्या देखता है, ये सारी जो लिंक है इनकी, जो बहुत शक्ति वाला अगर दुश्मन होता है तो भी क्या करता है समझदार आदमी, कि इनकी क्षति कहाँ है, सारे साकल में कौन सी जगह कमजोर है कि एक जगह तोड़ने से सारी साकल का बंधन टूट जाए, कुछ साकल है बेकार की है, वैसे वो सही रास्ता पकड़ देता है वैसे ही वो भीतर में दूसरा काम करता है, बाहर में दूसरा काम करता है। उद्देश्य बदल जाना चाहिए, ध्येय बदल जाना चाहिए, ये बात है। ऐसा कुछ विषय यहाँ चलता है श्रीमद्जी की जबान में, वाणी में, कि कहते हैं कि उदय बल से तीनों योगियों से प्रवृत्ति होती हो तो होने देना, इसमें कोई इतनी तकलीफ नहीं है। लेकिन जासूस की तरह अंतर में बदला हुआ अपना स्वरूप हो जाना चाहिए। तो धर्मदास जी तुलक ने ये बात ली है सम्यक ज्ञान दीपिका, हाथी का जो दांत है दिखाने का दूसरा है, चबाने का दूसरा है। जो दिखाने का है उसी से चबाने का काम नहीं होता है, और जिस दांत से वो चबाने का काम करता है वो दिखता नहीं है। वैसे नीचे के स्थान में सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर भी पूर्व कर्म के उदय छुपे न हो तो दिखाव की प्रवृत्ति भले ही हो, भीतर में सारी आत्मा बदल गई हो ऐसी स्थिति हो जानी चाहिए। उसको आत्मा का आचरण ऐसा कहने में आता है। परंतु अंत में उस प्रयोग से रहित स्थिति करने के लिए मैंने ऐसी प्रवृत्ति भी छोड़ने के लिए उस प्रवृत्ति का संकोच करते करते क्षय हो जाए, देखो बढ़ानी नहीं है, इसका संकोच करते करते क्षय हो जाए, यही उपाय कर्तव्य है। ऐसा उद्देश्य है ये प्रवृत्ति करने में आए तो अवश्य ऐसा ही होता है कि इसका संकोच होता है और उसका अभाव भी होता है। वह उपाय क्या है? वह उपाय के वह उपाय मिथ्या आग्रह का त्याग, प्रसन्नता का त्याग, प्रमाद का त्याग और इंद्रिय विषय का त्याग, ये मुख्य है। वो ये बहुत ही अच्छी मार्गदर्शन की विधि बताई है कि मिथ्याग्रह का वो त्याग करें। अगर उनको अपना कल्याण करना हो तो जो भी कुछ जाना हो, जो भी कुछ समझा हो अभी तक, और जैसे भी पूर्व संस्कार ग्रहण किया हो, उस सब पूर्वग्रह से रहित तो होकर इस लाइन में कल्याण का मार्ग को समझे, विचारे और आराधन करें विदाउट प्रेजुडाइस। पूर्वग्रह के साथ इसमें प्रवेश होने में इस लाइन की पकड़ होना, मार्ग हासिल करना बहुत दिक्कत पड़ती है। इसलिए मिथ्या आग्रह का त्याग करना, प्रसन्नता का भी त्याग करना, प्रसन्न के विषय में तो कल बहुत से पहले हमने सोचे थे, ऐसे ऐसे सब प्रकार के दोषों का त्याग करना और अपने कार्य में बहुत सतर्क रहना, अपने कार्य करने के लिए उद्यममंत रहना, तत्पर रहना, उत्सुक वृत्ति से, उत्साहित से अपना काम करने की वृत्ति लाना, उसको प्रमाद का त्याग कहते हैं, और इंद्रिय विषयों का त्याग मैंने बाहर में पांचों इंद्रियों की विषय की अपेक्षा, इसमें सुख बुद्धि छोड़ के उनकी अपेक्षा छूटती है तो सही रूप से छूटती है। सुख बुद्धि तो वैसी की वैसी रहे और विषयों का त्याग हुए तो ये सही रास्ता नहीं है, और इसमें आगे जाके हाथ हाल बिगड़ती है, इस इसमें कोई अवस्था का सुधार होने का अवकाश रहता नहीं। इसलिए सुख के विषय में खास करके जीव का जो प्रयोजन है सुख का, तो सुख के विषय में सच्चा सुख क्या है इसका निर्णय करना चाहिए, और वो निर्णय भी अंतर शोधन से करना चाहिए। मात्र ऊपरी ऊपरी साहित्य का अभ्यास करके जानकारी करके करना ये बात नहीं है। अंतरंग संशोधन करके अपना जो चालू जीवन है इसमें सुख दुख का विषय को पारमार्थिक दृष्टिकोण को लागू करके इसका निर्णय करना चाहिए कि इसमें सही सुख है या नहीं। कहने से मान ले तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। हमारा गुरु ने कहा है, हमारे भगवान ने कहा है कि इसमें सुख नहीं है, इसलिए नहीं हम मानते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अनुभव क्या होता है कि ये बात है, इधर जो भी मोक्ष मार्ग की नींव है ये बहुत कॉन्क्रीट विषय है, इसमें कोल नहीं चलती, ऐसा ये विषय है। वो इतना जबरदस्त विषय है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक के जो रचयिता है अपने टोटल मिली का, उन्होंने अपने रहस्यपूर्ण शिक्षक में यहाँ तक लिख दिया कि अगर सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है और शादी अनंत काल तक विराजमान रहेंगे और च्युत नहीं होंगे, इसका क्या कारण है? इसका कारण उनको संयोग करना है, यही है। ये बात लिया है, देखो ज्ञानियों का सुंदर की महिमा इतनी है कि जिसके कोई उत्थान नहीं दे सकते। कहां से कहां बात करते हैं, तो सर्वस्थ गृहस्थी है फिर भी ईमानदारी करते हैं,
पगड़ी बेचते हैं, पगड़ी पगड़ी
पगड़ी की दुकानदारी करते हैं, और वो भी बहुत लिमिटेड। कितना संकोच किया था, वो भी इतनी पगड़ी बिक गई कि बात खत्म, दुकान बंद करके निकला। घंटे में बिक गई तो आज का काम खत्म, लेकिन कल की कमाई के कल की कमाई कल आज नहीं। निष्फिक्रता कितनी है, निश्चिंतता कितनी है। जबरदस्त मीर वाला आदमी था, कल की फिक्र करने वाला वो नहीं था, संजो के ऐसा जबरदस्त था। क्या इनका जो सौक्षम था, इतना तगड़ा सौक्षम था, छोटी उम्र में गोबर साहब जैसे धर्म शास्त्रों पर टीका रखी और ऐसे समय सार आदि दर्शन साहब नियम सार आदि आध्यात्मिक परमात्मों का पूर्वाचार्यों का अध्ययन ज्ञान निचोड़ इसका पकड़ा, अध्ययन किया इतना ही नहीं इसका निचोड़ पकड़ा। ये तो उनको आचार विकल्प कहते हैं, जिसको जिसमें आचार की कल्पना की जा सकती है। आचार्य होते हैं जिन दर्शन में, वे ऐसे हैं कि जो शासन को अच्छी तरह समझते हैं। मैंने शासन में आने वाले जीवों की योग्यता को अच्छी तरह वो जानते हैं, फिर उस जीवों को क्या क्या देना चाहिए, उपदेश किस प्रकार से उपदेश करना चाहिए, इनका जो इतना विशाल और गहरा इस विषय में जो ज्ञान है, ऐसा ज्ञान दूसरे साधकों को नहीं होता है, दूसरे मुनियों को भी नहीं होता है जितना आचार्यों को होता है। इसलिए इनकी पदवी जो है ऐसे साधु में भी आचार्य पदवी ऊंची मानी गई है। ऐसे आचार्यों की तरह इन्होंने शास्त्र रचना का काम किया, ऐसा करके बात किया, उन्होंने ये बात कर दी, कहां से निकाली कि अपनी आत्मा में जो सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ उस सम्यक दर्शन के अनुभव में से निकाली, यही शास्त्र है। आप शास्त्र कहां से पैदा हुए, आत्मा में। तो जो भी ज्ञानी, जो भी सम्यक दृष्टि, जो भी साधक कैसे भी उस स्थान में हो, आत्मा के अनुभव में से दो बात निकाले बस यही साथ है, यही आगम है। मुझे तो बहुत कहते थे हम कहते हैं ये बात शायद आगम में से तुमको मिल जाएगी, क्योंकि तो नहीं मिले तो उसको ही आगम समझे, यही आगम है कहने का अधिकार है उनको, क्योंकि आत्मा में और इनकी तो आज भी कितनी बातें सिद्धांत जैसे आधारभूत हो गई है, बहुत सी बातें ऐसी हैं कि सिद्धांत की तरह आधारभूत हो गई है। ऐसे कहते हैं कि यह मुख्य है, इस प्रकार इस उपेय हुए दोषों का त्याग करना ये मुख्य है। उस सत्संग के योग में अवश्य आराधन करते ही रहना, सत्संग के काल में योग में मैंने क्या काल में ऐसे दोषों का त्याग का आराधन, आराधन अस्ति से नास्ति से दो प्रकार से कहा जाता है तो जो है सो है, लेकिन इसका जो कथन है वो तो दो ही प्रकार से कहा जाता है। दो ही प्रकार से इसलिए कहा जाता है कि उसका दो पहलू भी ऐसा है, अस्ति से शुद्धि का विकास होता है उसको आराधन कहते हैं, और नास्ति से दोषों का नाश होता है उसको भी आराधन कहने में आता है। उसको आराधन करते ही रहना और सत्संग की परोक्षता में तो दोनों बात किया, प्रत्यक्ष सद पुरुष हो गए तब तो उक्त दोषों को छोड़ना ही, और इसकी परोक्षता में तो अवश्य अवश्य आराधन किए ही जाना, उसको भी विचार की बात नहीं रखते हैं। मैंने क्या इनका धर्म है, अगर ऊपर ऊपर से चले तो ये सब ऐसा मामूली लगता है, लेकिन उनके कहने का यहाँ एक हेतु है, मकसद है इसके पीछे, कि सिर्फ विचार तक इस विषय को सीमित मत रखो, इस बात को जो तुमने सोची है और विचार के भूमिका में सम्मत की है, अच्छी लगी है, तो फिर उसका आराधन क्यों नहीं होता, इसका आराधन अवश्य होना ही चाहिए, जब इसको इसका लाभ मिलता है। और सत्संग की परोक्षता में तो अवश्य अवश्य आराधन किए ही जाना, क्योंकि सत्संग के प्रसंग में तो यदि जीव की कुछ न्यूनता हो तो उसके निवारण होने का साधन सत्संग है। सत्पुरुष के योग में कुछ कमी रहती है, कुछ क्षति रहती है तो आसानी से निकलती है, तो बदला देते हैं, इनकी अनुकंपा इतनी रहती है, कृपा रहती है तो वो बदला देते हैं, तो जानता है कि वो मोक्ष का कामी है, निर्दोषता का विलासी है, तो उनको बता देते हैं कि इस प्रकार से जो दोष होता है। तो वैसे प्रत्यक्ष योग में इतनी इतनी बातें आती हैं कि दोष अनेक प्रकार से निकल जाने का बहुत सुलभ हो जाता है, तो वहाँ तो आराधन जो है वो सहज रूप से होता है, परंतु सत्संग की परोक्षता में तो एक अपना आत्मबल ही साधन है, वहां कोई कहने वाला नहीं है, तो जो भी उसने दृढ़ संकल्प किया है इस बल पर ही उसको आराधन करना होगा। अगर इसका संकल्प बल दृढ़ बल नहीं रहा तो ये बात बातें में रह जाएगी, आराधन में आएगी नहीं। यदि वह आत्मबल सत्संग से प्राप्त हुए बोध का अनुसरण न करें, मतलब उसका आचरण न करें, और यदि आचरण में होने वाले प्रमाद को न छोड़े, पीछे करेंगे अभी तो थोड़ा ये काम है, पीछे पहले ये काम है, थोड़ा ये काम है, और लड़का बड़ा हो जाए तब तो थोड़ा और निवृत्ति मिल जाएगी, तो संभालेगा सब कुछ, क्या संभालेगा वो तो पूरा ममत रहेगा तो उसको अकेला छोड़ेगा
नहीं, नहीं।
मेरे को भी ऑफिस में साथ में ले जाओ, बैठा होगा, अगर मेरी एक भी सलाह मिल जाएगी तुझे बहुत फायदा जाएगा। कैसे इसमें प्रमाण को न छोड़े, मैंने मुख्यता जब नहीं आती है तब किसी न किसी बहाने अपने कल्याण की प्रवृत्ति को छोड़कर भी सांसारिक प्रवृत्ति में उलझता ही रहता है, उसी को यहाँ प्रमाद कहा है। तो किसी दिन भी जीव का कल्याण न हो तो बाद में तो होगा कि नहीं होगा, ये सब तो कहते हैं कि उनका तो कभी कल्याण होने वाला नहीं है, पीछे वाले का सब पीछे ही रहता है, आता है नहीं आता है, दृष्टि प्रकार पीछे पीछे करने वाले का सब पीछे ही रहता है, क्योंकि उनको वर्तमान में रुचि नहीं है और बिना रुचि काम ये हो सकता नहीं। रुचि नहीं इसका मतलब यही समझो कि इस मार्ग में अपना कल्याण है, अपना हित है, अपना सर्व प्रकार का दुख मिटने का उपाय है, इस बात को ठीक से समझा नहीं है, इसलिए उनको इनकी कार्य करने की रुचि नहीं है, और ये अरुचि का जो प्रदर्शित करने वाला भाव है ये यही है कि बाद में करूंगा, पीछे करूंगा, अभी नहीं, अभी नहीं। तो क्या करता है उदय में लोग क्या कहते हैं, पैसा लेने वाला जाता है तो नहीं देना ऐसा नहीं कहता है, दानत तो बिगड़ी हुई है लेकिन कहता है कि अभी नहीं, जब भी आवे टोकेगा अभी नहीं, पीछे देगा बाद में तो कब देगा, तो अभी नहीं, बस अभी नहीं है, ये इनकी बद्दानत को प्रसिद्ध करता है, ऐसा भी इस मार्ग है। थोड़ा भाग रह जाएगा बाद में।